सत्संग जी, प्रेम से कहना, सत्संगत करीब 2 बरस के बाद फिर से यहाँ अजमेर आकर सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस विशाल रूप में आप सभी के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। जैसा कि आप जानते भी हैं और अभी सूचित किया गया फिर से कि महाराष्ट्र का प्रांतीय संत समागम जो मुंबई में बरसों बरस से आयोजित हो रहा है, और अक्सर जब भी समागम की तरफ बढ़ना होता है तो कभी ये रूट जो है इधर से गुज़रते हुए कुछ स्थानों पे जाने के मौके मिल जाते हैं, कहीं पर मध्य प्रदेश वाला रूट हो जाता है, उस तरफ बसने वाले शहर गांव कस्बों में रहने वाले भक्तों के दर्शन हो जाते हैं। तो अब की बार भी यात्रा मुंबई की ओर बढ़ रही, और इसी में ही कल पावटा में करीब 8 बरस के बाद वहाँ सत्संग करने का मौका मिला, और वहाँ भी भरपूर उत्साह देखने को मिला। गांव कस्बों से चल कर आए भक्तजन इसी मस्ती में, जैसे अभी आप ऐसी मस्ती में चूर अपने प्रेम को अभिव्यक्ति दे रहे थे, इसी प्रकार से जहाँ जहाँ पर भी जाने के मौके मिलते हैं वहाँ वहाँ ही ऐसी लगन, ऐसी भावना लिए हुए भक्तों के दर्शन करने का मौका मिलता है, जो समाज में रहकर, परिवारों में रहकर कर्तव्यों का पालन करते हुए इस भक्ति को निभा रहे हैं, इस नाम के रंग में रंग कर इस जीवन के सफ़र को तय करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। चाहे किसी मुल्क, किसी प्रांत में रहने वाले हों, कोई भाषा बोलने वाले हों, लेकिन उनकी मन की अवस्था एक भक्ति वाली होती है। रंग भाता है तो भक्ति का रंग भाता है। अभी पिछले ही रविवार को 11 तारीख को दिल्ली में भक्ति पर्व का आयोजन हुआ, और वहाँ पर भी निरोल भक्ति का ही जिक्र हो रहा था। उन भक्तों को याद किया जा रहा था जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में हुए, या फिर आज के दौर में भक्तजन हुए जो इस वक्त भी हम जो सफ़र तय कर रहे हैं, तो उनको भी हम भक्ति में चूर देखते हैं, जो समर्पित किए रखते हैं अपने आप को, जो संसार के तुल्य इस मालिक निराकार को महत्ता देते हैं, जो प्रेम को महत्ता देते हैं, जो इंसानियत को महत्ता देते हैं, वो भी हमें, उनके भी हमें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है कि किस तरह से भक्तों, महापुरुषों ने इस जीवन के सफ़र को तय किया है। उनके लिए भी हालात हमेशा अनुकूल नहीं रहे हैं। अगर हम पुरातन हुए समय में महापुरुषों के, भक्तों के जिक्र करते हैं या उनकी महिमा गाते हैं, तो वो सब उनके लिए हालात और परिस्थितियाँ वो एक अनुकूल नहीं थी, जिसको हम कहते हैं कि मनचाही स्थिति। अनचाही स्थितियाँ भी, प्रतिकूल स्थितियाँ भी उनके जीवन में आती रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने संसार का रंग नहीं चढ़ाया, फिर भी उन्होंने संसार की प्रवृत्तियों को कबूल नहीं किया। वो अपने ही रंग में, नाम के रंग में, भक्ति के रंग में रंगे रहे। चाहे अप यश हुआ, चाहे कैसे भी रुकावटें सामने आई, चाहे कैसी भी स्थितियां आई, लेकिन उन्होंने अपनी चाल को सहज ही बनाए रखा। इस प्रकार से संतों महात्माओं ने, भक्तों ने एक ऐसे जीवन की मिसाल सबके समक्ष पेश की है। उनके बोल केवल बोल नहीं थे, जो उन्होंने केवल संसार को परचाने के लिए कहे या लिखे, वो वचनों को उन्होंने अपनाया, उसको धारण किया। उन बोलों के, उन लफ्ज़ों के नक्शे के ऊपर उन्होंने अमल करके दिखाया। अगर प्यार की बात हुई तो प्यार करके उन्होंने दिखाया। अगर विनम्रता की बात हुई तो अपने आप को दास बनाकर उन्होंने दिखाया। अगर उन्होंने विशालता की बात की तो अपने भी हृदय को विशाल किया। अगर सहनशीलता की बात की तो सहनशील बन के दिखाया। यानी कि जिस जिस का भी उन्होंने, जिस पहलू का भी, जिस उत्तम भावनाओं का उन्होंने जिक्र किया, जिस ऊंची अवस्था का जिक्र किया, उसको उन्होंने निभाया भी। इसीलिए वो सत्कार के पात्र बने हैं। आज के दौर पे भी जब हम जी रहे हैं, अगर किसी के बोल के साथ मेल खाता हुआ जीवन नहीं देखते तो हमारे मन में उसके प्रति सत्कार पैदा नहीं होता है। यानी कि सत्कार उसी के प्रति पैदा होता है जो बोल के साथ कर्म जोड़ के दिखाता है। तो अगर भक्तों का, संतों का आज यश हो रहा है, आज अगर हम उनको श्रद्धा से ये याद कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं, उनकी वाणी को हम झूम झूम कर पढ़ते सुनते गाते हैं, तो उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने ऐसी विनम्रता को धारण किया, ऐसी विशालता को धारण किया। उन्होंने जब वसुधैव कुटुंबकम की बात कही तो वाकई सारी वसुधा पे बसने वाले तमाम इंसानों को एक ही परिवार का अंग माना और अपने आप को भी उसी परिवार में शरीक माना। एक खुदा, एक अल्लाह, एक राम, एक परमात्मा, ईश्वर, अकाल पुरख की ये सारे ही संतान हैं। तो उनकी बात केवल औरों के लिए नहीं थी कि वसुधैव कुटुंबकम, वाकई ही वो कुटुंब वाली भावना उनके मन में थी, इसलिए उनके लिए कोई पराया और कोई बेगाना नहीं था, उनके लिए कोई नीचा नहीं था। सबको एक अपने से उत्तम मानने की भावना उनके हृदय में थी। जैसे कबीर जी के वचन हम पढ़ते हैं कि कबीर सबते हम बुरे हम तज भलो सब कोय, कि सबसे बुरे हम हैं और हमें तज, हमें छोड़कर बाकी सब भले हैं। तो इस प्रकार की भावनाएं ये जिनके हृदय में घर कर जाती हैं, तो फिर कोई कारण नहीं कि उनका रुतबा बुलंद क्यों ना होगा, वो ऊंचे शिखरों तक क्यों नहीं पहुंचेंगे। तो ये एक ऐसी ही भावनाएं हैं जो अनुकरण और अनुसरण करने लायक हैं, और वो महापुरुषों ने खुद ऐसा जी के दिखाया। जैसे एक सुई चलती है और सुई के पीछे उसके अंदर धागा डाला होता है, तो सुई जिस तरफ जाती है धागा भी उसी तरफ जाता है। ये नहीं है कि सुई एक तरफ जाए और धागा कहीं और जा रहा हो। अगर वो उस सुई में है फिर तो धागा भी उसी तरफ जाएगा। और वो कपड़ा सिलना होता है, वो अक्सर सुई ने नहीं सिलना होता, वो सिलना तो धागे ने ही होता है। इसी प्रकार से महापुरुष हमारे लिए प्रेरणा के कारण बनते हैं, लेकिन हम अनुकरण करके हम इस प्रकार से उपयोगी बन जाते हैं, औरों के लिए भी हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हम औरों के लिए भी सुख का कारण बन जाते हैं और हम भी फटे हुए कपड़ों को सिलने का रूप बन जाते हैं, एक घाव जो होते हैं उन घावों को भरने का काम कर जाते हैं, एक दूसरों को एक खुशी प्रदान करने में योगदान दे जाते हैं। तो इस तरह के योगदान संसार आज कहाँ पर दे रहा है? संसार में केवल और केवल आपाधापी पड़ी हुई है, केवल खुद गर्जियों में चूर है, नगमे भक्तों के गा रहा है, सूफी संतों के औलियाओं के गा रहा है, लेकिन वह ईर्ष्या नफरत संकीर्णताओं से भरा पड़ा है। एक दूसरे को खुशी तो क्या प्रदान करनी है, दूसरों के घर में मातम फैलाने में लगा हुआ है, मासूमों की जाने लेने में लगा हुआ है, अल्लाह का नाम लेके, राम का नाम लेकर, खुदा का नाम लेके, अकाल पुरख का नाम लेके, बोल तो बड़े ऊंचे ऊंचे और जय जयकारें भी ऊंची ऊंची कर रहा है, यात्राएं जब तप स्नान भी कर रहा है, लेकिन वो भावनाएं कहाँ पर गई, वो चाल कहाँ पर गई, वो दृष्टि कहाँ पर गई? वो तो कहीं नहीं देखने को मिल रही, ना दृष्टि मिल रही है। अगर दृष्टि से देखा जा रहा है तो ऊंच नीच वाली दृष्टि से देखा जा रहा है, अपने पराये वाली दृष्टि से देखा जा रहा है, दूसरे को नीचा करके देखा जा रहा है। और प्यार, प्यार का नामो निशान नहीं, कदुरत, वैर, ईर्ष्या, नफरत, जलन, इसमें जल रहा और जला रहा है, ये एक चाल है। इसी प्रकार से ये संसार में हम जब देखते हैं तो ऐसी ही खुदगर्जियाँ, और अगर भक्तों का नाम ले रहे हैं, उनकी वाणी का जिक्र कर रहे हैं, वो तो त्याग कर रहे हैं, वो तो निछावर हो रहे हैं, एक वृक्ष की तरह खुद कड़कती धूप में खड़े होकर दूसरों को छाया दे रहे हैं, इस प्रकार के उनके जीवन। लेकिन इंसान आज का किस कदर एहसान फरामोश, किस तरह से लोभ लालच में युक्त, वहाँ पर त्याग किए जा रहे हैं, बलिदान किए जा रहे हैं, और यहाँ पर एक छीना जा रहा है, दूसरे के हक को दबाया जा रहा है, दूसरों को लूटा जा रहा है, इस प्रकार से बिल्कुल ही विपरीत। जिक्र और गुणगान सवेरे के, लेकिन जीवन अंधकार में। तो ये एक ऐसी एक अवस्था है जो इंसान को नीचा करके पेश करती है। इंसान का रुतबा इसीलिए बुलंद नहीं होता है। तो महापुरुष कहते हैं कि केवल इंसानी जन्म पा लेने से ऊंचे नहीं हो जाओगे, जब तक वो चाल नहीं चलोगे, जब तक अपने मन को रोशन नहीं करोगे, जब तक इस रंग में रंगोगे नहीं, जब तक संसार से ऊपर उठकर नहीं जियोगे, तब तक तुम्हारा रुतबा पशुओं से बदतर ही माना जाएगा। भले ही तुम इंसानी योनि में आए हो, सबसे श्रेष्ठ योनि में आए हो, लेकिन तुम्हें उसी कतार में देखा जाएगा जो जानवर, खूंखार जानवर और पशुओं वाली कतार है, उसी में तुम्हें देखा जाएगा। इसलिए बदलाव जीवन में लाना ज़रूरी है। ये अपने जीवन में रेवोल्यूशन और एक क्रांति लाना ज़रूरी है। अंधकार को उजाले में तब्दील करना ज़रूरी है, संकीर्णता को विशालता में तब्दील करना ज़रूरी है। एक रेफॉर्मेशंस की हम अक्सर जिक्र करते हैं, यानी कि रिफॉर्म, कि अपने आप को एक रिफॉर्म देना, एक लोहे से कंचन बनना, एक कांटे से फूल बनना, ये एक क्रांति और रेफॉर्मेशन ये हर एक के जीवन में आए। इसीलिए महापुरुष संत जन एक ऐसे संदेश दिए चले जा रहे हैं, एक आईने के रूप में सामने वो रख रहे हैं ये सच्चाइयाँ जीवन की। एक आईना जैसे सामने रख दिया जाता है, उसके पीछे एक मकसद यही होता है कि आईना देखकर अपने आप को संवार लें, कहीं पर बाल बिखरे पड़े हैं, कहीं चेहरे पे दाग लगे हुए हैं, तो उसको हम सवार लें, यानी कि उस एक बदसूरती को खूबसूरती में हम तब्दील कर लें। इस तरह से महापुरुष संत जनों के वचन भी यथार्थ वचन होते हैं, कल्याणकारी वचन होते हैं। अभी भी आपने गीत भी सुने, कविताएं भी सुनी, छोटे बच्चों की रसना से निकले हुए अमोलक वचन श्रवण किए, माताओं बहनों की जुबान से सुना, बुज़ुर्ग नौजवानों की ज़ुबान से सुना। तो ये सारे ही वचन एक शास्त्रों और महापुरुषों के शिक्षाओं को एक सादा शब्दों में इस्तेमाल करके सबके सामने पेश किया जा रहा था, यानी कि वही आईना सामने रखा जा रहा था। लेकिन इंसान की फितरत फिर मुड़कर वहीं आती है कि आईना सामने रख भी दिया जाता है और वहाँ पर भी दो अवस्थाएं, एक तो अपना बिगड़ा हुआ रूप देखकर भी सवरने को तैयार नहीं, और दूसरा अपनी आंखें ही बंद कर लिए जाएंगे कि आंखें ही बंद कर लो, क्या देखना है। ये तो बात वही है जैसे वो अंग्रेज़ी में कहावत है कि एक जो फैक्ट्स हैं वो जो फैक्ट फैक्ट ही होता है, उसको अगर आप नहीं मानते तो फैक्ट ही रहता है। फैक्ट रिमेन्स द सेम इवन इफ यू डू नॉट बिलीव इट, कि जो सच्चाई है वो तो सच्चाई ही रहती है, वो तो वही रहती है, और उसको अगर बिलीव नहीं करते, उसको नहीं मानते या उसको महत्ता नहीं देते तो इसमें अपना ही नुकसान। जैसे वो कबूतर और बिल्ली का जिक्र कई दफ़ा दास ने किया है कि एक कबूतर को कहा कि बिल्ला आ रहा है तो इससे कैसे बचोगे, तो कहने लगा कि मैं अपनी आंखें ही मूंद लूँगा कि ना दिखाई देगा तो मेरा बचाव हो जाएगा, अपनी आंखें बंद कर लेगा उससे बचाव नहीं होगा। वो समझता है मैं आंखें बंद कर लूँगा तो बिल्ले की भी आंखें बंद हो जाएंगी, तो वो एक नकार रहा है, वो उसको डिनाई कर रहा है। तो डिनाई करने से, स्टेट ऑफ डिनायल जिसको हम कहते हैं, कि वो डिनायल की अवस्था में होता है संसार, लेकिन हकीकत तो हकीकत है, सच्चाई तो सच्चाई है। इससे लाख मुनकर होता रहे लेकिन वास्तविकता तो वास्तविकता है। तो इसलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि सवार लो अपने आप को, ये महापुरुषों के वचन ये यथार्थ वचन हैं, ये कल्याणकारी वचन हैं, ये वचन सुनकर अपनाने लायक हैं। वरना हम अपना लेते हैं वो वचन जिनका कोई सार नहीं है, जो हमारे लिए रत्ती भर भी कल्याणकारी नहीं है, बल्कि हमारे मन को दूषित करते हैं, हमारी चाल को बहकाते हैं, लड़खड़ाती हुई चाल चलने के लिए ऐसे वचन सुनकर हम प्रेरित होते हैं। कहीं पर नशे की बात होगी, एकदम से हम नशा करने लग पड़ेंगे, उसी दोस्त का, मित्र का, किसी और का असर ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार से कितने कितने ऐसे बोल हैं जिनको महापुरुषों ने बक बक झक झक करना जान कहा है कि उनके कोई मायने नहीं हैं, लेकिन ये वचन जो हैं ये यथार्थ वचन हैं, ये कल्याणकारी वचन हैं। लोग कहें ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, कि ये केवल कोई सुरताल नहीं, कान रस के लिए नहीं है। अक्सर हम कथाएं या गीत भजन, हम अपने आप को सीमित रख देते हैं, एक कान रस तक उसको सीमित कर लेते हैं, या कोई हंसी मजाक की कोई चीज़ें सुना दी तो बस मनोरंजन हो गया। तो लोग कहें ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार, वास्तविकता में उसको उस संजीदगी से लेना कि जो बात कही जा रही है वो बात उत्तम है, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो वाक्य ही अपनाने लायक है, उससे जीवन सवरेगा, उससे जीवन में बदलाव आएगा। तो वो बोल, वो वाणी, वो शब्द, वो वाक्य ही बहुत جیسے کاہ کی املیک لال یہ رتن، کہ واقعی یہ بہت قیمتی ہیں، یہ بہت امولک ہیں۔ تو ایسے بچن شرون کر کے جو بھکت پروتی والے ہوتے ہیں وہ اس کو ہیرے موتی سمجھ کر اس کو اپنا لیتے ہیں، اور زیادہ مالا مال کر لیتے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن جن کی یہ پروتی نہیں ہوتی وہ ان ہیرے موتیوں کا مول کنکر ڈالتے ہیں اور ان کو پاؤں کے نیچے رون دیتے ہیں، اور پاؤں کے نیچے ان کو موتیوں کو کنکر جان کر یا اس کی قیمت کنکر ڈال کر رون تو دیتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ خود پھر کنکر کی طرح روندے جاتے ہیں، پھر ان کے کوئی مول نہیں ہوتا ہے، وہ ہری کی درگاہ میں بھی شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس پرکار سے ان کو لوک اور پرلوک ان کا ایک بگڑ جاتا ہے۔ یہاں پر سنورنے کی بات ہو رہی ہے، بگڑنے اور بگاڑنے کی نہیں، سنورنے اور سنورنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور جو واقعی اس کو اس روپ میں لے لیتا ہے، اس راستے پہ چل نکلتا ہے، وہ واسطکتا میں اپنے سنسار میں آئے ہوئے کو سفل بھی کرتا ہے، اور صحیح معنوں میں اپنی انسان ہونے کی پہچان بنا لیتا ہے۔ اور جب کوئی انسان ہونے کی پہچان بنا لیتا ہے وہ دیوتا کی پہچان والا بن جاتا ہے۔ تو ایسی پہچان یہ بنانے کے لیے ہی مہاپرش سنت جن لگاتار پروپکار کرتے چلے جا رہے ہیں، جن جن تک یہ سندیش پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی آپ نے یہاں پر بچن سنے، کہیں پر بھی کوئی لوبھ دیا گیا، کہیں پر کوئی اور پرکار کے کوئی لالچ دی گئی، کسی پرکار کا کوئی اور ایسا بھے دیا گیا ہو، یہاں پر کیول سچائی کا بیان ہوا، جو ویدوں شاستروں میں لکھا گیا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی آتما کا کلیان کرنا ہے، اور آتما کا کلیان ہونا ہے آتما کو مول کا بودھ کرا کے، اور باقی بھی تمام سہج جیون کی چال چلنے کے لیے صبر اور سنتوکھی بن کر کنٹینٹ ہو کر اس داتار کا شکرانہ کرتے ہوئے اس پرکار کا جیون جینے کے لیے ہی یہاں پر پریرت کیا جا رہا تھا۔ تو آؤ ساتھ سنگت، کہنے کا بھاو یہی ہے کہ مہاپرش سنت جن بھکت جنوں نے ہمیشہ ہی یہی ایک سنسار کے سامنے یہ پہلو رکھے ہیں، جن کا مہتو ہر یگ کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، ہر بھاشا ہر پہلاوے والے کے لیے ہے، ہر سنسکرتی والے کے لیے ہے۔ اس کا مہتو ستیگ میں بھی تھا، تریتا میں بھی، دواپر میں بھی، کل یگ میں بھی انہی پہلوؤں کا مہتو ہے۔ یگوں کے بدلنے سے اس کا مہتو کہیں بدلا نہیں ہے، کوئی کم نہیں ہوا ہے۔ جیسے کل بھی داس کہہ رہا تھا کہ سوریہ کا مہتو کہیں ستیگ سے یاترا شروع ہو کر کل یگ میں آتے آتے کہاں مہتو کم ہو گیا ہے کیا، سوریہ کا وہی مہتو ہے۔ سوریہ کی وشیشتا وہی کی وہی ہے، سوریہ کی اپیوگتا وہی کی وہی ہے۔ جیون چل رہا ہے، اناج پک رہا ہے، پھل پھول پراپت ہو رہے ہیں، تو اگر یہ سوریہ کی کہیں مہتا کم ہوئی ہوتی تو اس دھرتی کے استتو کی بھی اس میں بھی انتر آ چکا ہوتا۔ تو یہ جیسے سوریہ کی مہتا ہر یگ ہر کال ہر ملک کے لیے، کوئی کہے کہ امریکہ بڑا ڈیولپڈ ہے تو امریکہ کو کیا سوریہ کی ضرورت ہے، اس کو بھی سوریہ اور سوریہ کی کرنوں کی، اس کی تپش کی ضرورت ہے۔ لاکھ اس نے ترقیاں کی گئی ہو، سپر پاور بنا ہوا ہو، اسی پرکار سے کوئی بہت سمجھے کہ میں بڑا امیر ہو گیا ہوں، میں بڑا حاکم ہو گیا ہوں، میں بڑا سندر ہوں، میں بڑا ودیا والا، بڑی ڈگریاں والا ہوں، تو مجھے تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ان بھاوناؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مہاپرش کہتے ہیں نہیں، ہر کسی کے لیے ضرورت ہے، ہر کسی کے لیے اہمیت ہے، محل والے کے لیے بھی، جھونپڑی والے کے لیے بھی، سندر ہو یا کروپ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے مہتا ہے۔ تو اس لیے ہر ملک والوں کے لیے، ہر بھاشا والوں کے لیے، ہر پہراوے والوں کے لیے ان تمام بچنوں کا، ان سکشاؤں کا مہتو ہے۔ और हम इन शिक्षाओं को महत्व दें और जो जो महत्व देते चले जाते हैं वो ही अपना पार उतारा करते चले जाते हैं, वो ही अपने आप म्यार को ऊंचा करते चले जाते हैं, वही एक वरदान इस धरती के लिए एक असेट बनते चले जाते हैं। तो यही हर कोई करे और कर पाए, इसके लिए ही संदेश और प्रार्थनाएं की जा रही हैं। संदेश भी दिए जा रहे हैं, शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं कि दातार सुमति दो, दातार सबको ऐसी मति दो, सबको ऐसी जागृति प्रदान हो, सबको ऐसी विजडम मिले ताकि सभी ठीक ठीक चुनते चले जाएं, ठीक ठीक अपनाते चले जाएं, एक ठीक रास्ते पे चलते चले जाएं और इस प्रकार से इस धरती को सुंदर बनाने में, समाज को सुंदर बनाने के लिए, परिवारों में सुंदर वातावरण बनाने के लिए इस प्रकार से जीवन की चाल को चलते चले जाएं। तो ऐसी ही शुभकामनाएं भी की जा रही हैं और नया वर्ष आया है, अभी करीब 3 हफ्ते होने जा रहे हैं, तो नए वर्ष के आगमन पर भी शुभकामनाएं हर बरस की जाती हैं, तो अब की बार भी शुभकामनाएं की गईं। भक्तजन भी यही शुभकामनाएं हमेशा करते हैं कि दातार सबको सुमति दो, सबको विवेक बुद्धि प्राप्त हो, सभी जीवन की चाल सुंदर ढंग से चलें, कोई एक जुल्म से तम ना हो, कोई वैर वास्ते ना हो, कोई दुत्कारा ना जाए, हर कोई प्रेम भाव से युक्त होकर विचरण करे और इस प्रकार से अपने इस जीवन के सफ़र को, इन लम्हों को, इन पलों को, इन क्षणों को, इन मोमेंट्स को, हर मोमेंट को, हर पल को, हर क्षण को इस प्रकार से बिताएं कि वाकई ही जिसको हम कहते हैं कि सुनहरी हो जाए सब कुछ, तो ऐसा एक सुनहरी एक जीवन हम सभी जी पाएं। इसीलिए शुभकामनाएं और प्रार्थनाओं के साथ, जैसे कहा कि महापुरुष मार्ग प्रदर्शित भी करते हैं, संदेश भी देते हैं, तो उसी संदेश को सुनकर, उसको अपनाकर सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। यही एक प्रार्थना, यही शुभकामना, इसी अरदास के साथ दास साहब से इजाज़त चाहेगा, क्योंकि समय भी अधिक हो चुका है और सर्दी के दिन और रात्रि का वक्त है और समय भी जो निश्चित था उससे कुछ आगे निकल गए, क्योंकि आज सुबह हालांकि जयपुर में केवल रात्रि ही रहना था, पावटा से चलकर सत्संग करने के बाद रात्रि जयपुर में पहुंचना हुआ, तो सुबह क्योंकि रविवार था आज, तो रविवार के कारण महापुरुष वहाँ आने शुरू हो गए और ऐसा सिलसिला चला कि सोचा था कि आध 1.5 घंटे में रुखसत हो जाएंगे, लेकिन करीब 3.5 घंटे लग गए, इतनी संगत वहाँ पर पहुँच गई। तो इस प्रकार से कुछ देरी भी हुई आने में, लेकिन आप महापुरुषों ने शाम से ही, जब से सत्संग का आरंभ हुआ तभी से ही यहाँ पर अमोलक वचन श्रवण कर रहे हैं और उससे आनंदित हो रहे हैं। तो ये भी घड़ियाँ पल जो बीत रही हैं, ये भी उसी प्रकार से एक ऐसे वचन जो हमें सत्य की ओर अग्रसर करते हैं, जो मानवता के तरफ अग्रसर करते हैं, हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराने के रूप में हैं। तो उनको श्रवण करके सभी आनंदित भी हो रहे हैं और प्रेरित भी हो रहे हैं और आगे भी औरों को प्रेरित करने के लिए भी उत्साह प्राप्त कर रहे हैं। तो यही अरदास कि ऐसी ही अवस्था प्राप्त होती चली जाए, इस रंग में रंगे रहें और सभी आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। इसी शुभकामना के साथ दास साहब से इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन्य।